बच्चों, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज हम आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमारे इस चैप्टर का नाम है भारत की जलवायु। जलवायु के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं बच्चों? तो बच्चों, हमारी जलवायु के अंदर न केवल हमारी बल्कि अगर हम पूरे जलवायु की ही बात करें तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सभी कवर अप होते हैं। और अभी तक हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में अपने क्लाइमेट को समझा, ये देखा कि हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और हमने अपनी लास्ट टू क्लासेस में स्पेसिफिकली राजस्थान के ऊपर पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन सी एयर राजस्थान के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं, और राजस्थान में सीजन्स कितने होते हैं। इन सारे सीजन्स की बहुत डेप्थ में स्टडी की है अभी तक हम लोगों ने। इसके अलावा हमने कई सारे मैप्स भी देखे बच्चों, और फिर हम पहुँचे थे पेज नंबर 144 पर। पेज नंबर 144 पर बच्चों, हमें महत्वपूर्ण बिंदु में 7 जानकारियां हासिल करनी है। चलिए देखते हैं कि वो 7 या 8 जानकारियां हमसे क्या कहती हैं। तो पेज नंबर 144 आप ओपन करिए, इसमें दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें पहला बिंदु कहता है, भारत की कुल वर्षा का 90% भाग ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। भारत में वर्षा का क्षेत्रीय वितरण अत्यंत असमान है। शीत ऋतु प्रायः शुष्क होती है। देश की 10% वर्षा शरतकालीन मानसून तथा चक्रवातों से प्राप्त होती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार देश में 6 ऋतुएं हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बांटकर देश में वर्षा करता है, यथा अरब सागरीय शाखा व बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान की जलवायु विषम है। राजस्थान में गर्मी में तेज लू चलती है व सर्दी में मावट से वर्षा होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। तो बच्चों, के जो महत्वपूर्ण बिंदु अभी हमने रीड किया, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन है। यानी जो भी हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने हैं या फिर अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके कहने का क्या मतलब था, वो हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु के अंडर 8 पॉइंट्स में समझाया गया है। तो पहला पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि भारत में टोटल जो 90% रेनफॉल होता है वो समर सीजन्स में होता है, और समर में भी ये स्पेसिफिकली दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मिलता है, यानी साउथ वेस्टर्न मानसून से ये रेनफॉल होता है। और भारत में यानी हमारे इंडिया में बच्चों, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनसर्टेन है, यानी कि असमान है। तीसरा पॉइंट हमें ये समझाता है कि भारत में जब विंटर सीजन होता है तो यहाँ पर ड्राई मौसम होता है। आप सभी ने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा, विंटर सीजन के टाइम हम ज़्यादा लोशन यूज़ करने लग जाते हैं, बहुत सारी क्रीम यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं, तभी हमें समझ में आ जाता है कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है, इसका मतलब एयर जो है वो ड्राई है। और 10% यानी कि 10% जो रेनफॉल है वो हमें शरतकालीन मानसून और चक्रवात यानी साइक्लोन से मिलता है। अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, उसका जवाब आप मुझे दीजिए कि भारतीय संस्कृति के अनुसार देश में कितनी ऋतुएं हैं, 4 या 6? चलिए आप सोच करके बताइएगा। पांचवा पॉइंट हमसे ये कहता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसकी वजह से हमारे देश में बारिश होती है, वो 2 शाखाओं में बांटकर देश में बारिश करता है। तो ये जो 2 शाखाओं में बांटता है, इसका पहले शाखा का नाम है अरब सागरीय शाखा, दूसरी शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसके बाद हमारे राजस्थान की जलवायु की बात की गई है कि यहाँ की जलवायु बहुत विषम है और गर्मी में यहाँ पर बहुत तेज लू चलती है और सर्दी में एक हवा चलती है बच्चों, जिसको हम मावठ कहते हैं, और इसी मावठ हवा की वजह से सर्दी में थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम रेनफॉल की बात करें बच्चों, तो राजस्थान में वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही हमें मिलती है। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए हम फटाफट से बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंडर, और प्रश्न पूछता है मानसून शब्द रूपांतर है ऑप्शन ए मौसम का, ऑप्शन बी मोनिस का, ऑप्शन सी मानस का, या ऑप्शन द, तीनों ही सही है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी मानसून शब्द रूपांतर है मौसम शब्द का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मावठ की वर्षा होती है ऑप्शन ए बसंतकालीन वर्षा, ऑप्शन बी शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी ग्रीष्मकालीन वर्षा, और ऑप्शन डी सामान्य वर्षा। तो अभी अभी हमने देखा बच्चों कि राजस्थान में विंटर्स में एक स्पेशल बारिश होती है जिसको हम कहते हैं मावठ। तो इससे ही आप समझ गए होंगे कि मावठ की वर्षा शीतकालीन वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछता है भारतीय संस्कृति अनुसार ऋतुओं की संख्या है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन स 3, ऑप्शन द 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द 6। इसके बाद है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसका पहला प्रश्न पूछता है मौसम शब्द किस भाषा का है। तो बच्चों हमने सबसे पहले में ही डिस्कस किया था कि हमारी जलवायु को हम स्पेशल नाम से पुकारते हैं जो है मानसून, और मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है मौसम, इससे निकला है। तो मानसून शब्द कौन सी भाषा से निकला है, तो ये निकला है अरबी भाषा से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछता है बच्चों सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने पर उच्च दाब कहाँ होता है। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप पता लगाइए कि कर्क रेखा कौन सी कंट्री या कौन से ओशियन के साइड में पड़ता है। तो बच्चों हमारी जो कंट्री है उसको एक रेखा बीच से काटती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बस आप इससे पता लगा सकते हैं कि अगर कर्क रेखा हमारे देश के आसपास में है तो जब सूर्य की गर्मी कर्क रेखा पर पड़ेगी तो इसका मतलब कि हमारे देश में गर्मी बढ़ जाएगी, और जहां पर गर्मी बढ़ती है बच्चों वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहता है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है। तो इसके ऑपोजिट पूछा गया है यानी कि उच्च दाब कहाँ होगा, और अभी तक हमने अपने इंडिया के क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में केवल 2 जगहों की बात की है जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करता है। एक है हमारी कंट्री की एरिया और दूसरी है इंडियन ओशन के एरिया। तो आप समझ लीजिए बच्चों कि अगर कर्क रेखा पर सूर्य की रेखा पड़ रही है, सूर्य की किरण पड़ने से गर्मी कर्क रेखा पर बढ़ेगी, इसका मतलब इंडिया के लैंडमास पर उस टाइम गर्मी होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुदाब निम्न होगा। और इसके ऑपोजिट इंडियन ओशियन में वायुदाब जो है वो उच्च वायुदाब होगा। तो आपके प्रश्न संख्या दूसरे का जवाब है कि सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने पर उच्च दाब इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या तीन हमसे पूछता है, सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत चमकने पर निम्न दाब कहाँ होता है? तो बच्चों इसका भी जवाब इंडियन ओशियन ही होगा। वो इसलिए क्योंकि हमने ऊपर देखा कि सूर्य की किरण जब कर्क रेखा पर पड़ती है तो गर्मी होती है लैंडमास पर, जहां गर्मी होती है वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें और सन रेज अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रहा है यानी मकर रेखा पर, तो इस बार लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होगा? वो होगा मकर रेखा के आसपास यानी सदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ कि हमने अभी तक इंडिया के कंटेक्स्ट में केवल दो प्लेसेस देखी हैं जहाँ पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई या लो देखा है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशियन और जापान के जो सी है, इन इलाकों में उस टाइम पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो हमारे दोनों प्रश्नों की जो जवाब है बच्चों वो है हिंद महासागर का क्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर हमसे पूछता है, जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है? तो बच्चों अगर आपने बढ़िया से इस चैप्टर को सुना होगा तो हमने देखा कि जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलती है, और ये हमें लिखा हुआ है पेज नंबर 125 के जलवायु परिस्थितियों के जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में, जिसमें लिखा है हवाओं का ऐसा प्रवाह जो निम्न क्षोभ मंडल में पहुंचता है उसी जेट स्ट्रीम से धरातल पर वर्षा होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि हम अपने एटमॉस्फेयर को वर्टिकली बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से हमारे धरातल से ऊपर वाला जो मंडल है हम उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो जब हवा उस क्षोभ मंडल में पहुंचती है तो उसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, और इसी जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे लैंडमास पर रेनफॉल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की बारी है, और क्वेश्चन नंबर फाइव पूछता है, राजस्थान में ग्रीष्मकालीन निम्न वायुदाब कहाँ बनता है? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये पूरा राजस्थान से कनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान की ग्रीष्मकालीन वायुदाब कहाँ पर बनती है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 142 पर वापस से जाइए, और इसमें आप सेकंड पॉइंट यानी ग्रीष्म ऋतु का सेकंड पॉइंट वायुदाब पवने और वर्षा, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है भीषण गर्मी के कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। तो चूंकि हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं पूछता है तो हम अपने जवाब में यही लिखेंगे कि राजस्थान में ग्रीष्मकालीन समय में निम्न वायुदाब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बनता है। और इसी प्रश्न के साथ हमारा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न समाप्त होते हैं, और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ, जिसका पहला प्रश्न पूछता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण बताइए। तो चलिए एक बार हम देखते हैं बच्चों भारत की जलवायु को। और देखते हैं कि भारत की जलवायु को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आप फिर से एक बार पेज नंबर 134 टर्न करें। तो बच्चों यहां पर लिखा है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो उन कारकों को बच्चों हमें प्रश्न में केवल उनके नाम पूछे गए हैं, ना कि उनकी प्रोसेस पूछी गई है। तो जो ये सारे पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, हम केवल उसको ही अपने जवाब में मेंशन करेंगे। तो जैसे समुद्र तल से ऊंचाई, या पॉइंट फर्स्ट में लिखिए, पॉइंट सेकंड समुद्र से दूरी, पॉइंट थर्ड अक्षांशीय स्थिति, पॉइंट फोर्थ पर्वतों की स्थिति, पॉइंट फाइव पर्वतों की दिशा, पॉइंट सिक्स पवनों की दिशा, पॉइंट सेवन उच्च स्तरीय वायु संचरण। ये हो गया हमारा प्रश्न। अब बच्चों एक बात और गौर करिएगा कि अगर हमें प्रश्न में ये पूछा होता कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को एक्सप्लेन करिए, या डिटेल में बताइए, या विस्तार से समझाइए, तो हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को लिख करके इनको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन भी करते। लेकिन यहाँ पर हमें उन कारकों को विस्तार से समझाने को नहीं कहा गया, इसीलिए हम केवल उन पॉइंट्स का नाम मेंशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन मानसून काल की ऋतुओं के नाम अवधि सहित लिखिए। बच्चों इसका जवाब हमको मिलेगा पेज नंबर 134 पर। पेज नंबर 134 पर जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है उसको ध्यान से देखिए। इस लास्ट पैराग्राफ में हमें इन सातों फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, उनके अलावे भी 4-5 फैक्टर्स बताया है जो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद ही हमें जलवायु की परिस्थितियों के बारे में 4 विभिन्न ऋतुओं के बारे में बताया गया है। और इसमें ही कॉ पॉइंट में लिखा है उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून काल, जिसमें पहला है शीत ऋतु जो कि दिसंबर से फरवरी तक होता है, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मध्य जून तक होता है, ख यानी कि दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसूनी काल में भी 2 ऋतुएं हैं, पहला है वर्षा ऋतु जो कि मध्य जून से मध्य सितंबर तक होता है, दूसरा है शरद ऋतु जो कि मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक होता है। और ये हुआ आपका जवाब। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमसे पूछता है अरब सागरीय मानसून के बारे में बताइए। तो बच्चों इसमें केवल आपको अरब सागर से जो हवा चल रही होती है और अरब सागर का जो मानसून होता है इसके बारे में बताना है। बच्चों इसका जवाब हमें मिलेगा पेज नंबर 139 पर। इस पर स्पेशली लिखा है अरब सागरीय शाखा, और उसके अंडर एक पैराग्राफ में इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब आप इस पूरे पैराग्राफ को बढ़िया से पढ़िए, समझिए, और इसके पॉइंट्स बना करके हमारे प्रश्न नंबर 3 का जवाब लिखिए। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। 4 पूछता है हमसे मानसून की उत्पत्ति के बारे में जेट स्ट्रीम विचारधारा बताइए। तो बच्चों इसका जवाब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जेट स्ट्रीम की विचारधारा क्या है। तो आप एक बार फिर से उस पेज पर जाइएगा जिसमें हमने क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा था, और जेट स्ट्रीम की विचारधारा को बढ़िया से पढ़ के जवाब लिखिएगा। बच्चों मैं सारे प्रश्न इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन प्रश्न ज़्यादा है। तो अगर पढ़े पढ़ाए प्रश्नों को मैं फिर से बताऊंगी तो फिर हमारे एक बार रीड आउट करने का या एक बार क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स को मग अप नहीं कराना है। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने आंसर्स आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, तो मैं यहाँ आपकी केवल हिंट दे रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ, जिससे कि आप आगे बढ़ के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद लिखिए। बाकी अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या उसको फ्रेमिंग करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या उसका डायरेक्ट स्टेटमेंट हमें किताब में नहीं मिलता है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पर डेप्थ में डिस्कस कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है, राजस्थान की वर्षा का अरावली श्रेणी से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि अरावली पर्वत की जो पोजीशन है वो हवाओं के बिल्कुल पैरेलल है, यानी समांतर है, और इसी वजह से यहाँ पर हवाओं को अवरोध नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बारिश जो है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो अभी आपको क्या करना है कि राजस्थान की जलवायु वाले टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना है, और जो स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया उसको खुद के वर्ड्स में समझ करके इस प्रश्न का जवाब लिखना है। उम्मीद है आप ये प्रश्न खुद से कर सकते हैं। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि है निबंधात्मक प्रश्न। इसमें बच्चों अब हमें बहुत बारीकी से कंसेप्ट को समझ करके और एसे के फॉर्म में, यानी पैराग्राफ्स के फॉर्म में अपने जवाब को लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय के तापक्रम, वायुदाब, पवनों की स्थिति व वर्षा का वर्णन कीजिए। तो इसमें बच्चों जिस मानसून की वजह से हमारे भारत में बारिश होती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसके सभी फैक्टर्स, उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, यानी उसकी टेम्परेचर, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी विंड की पोजीशनिंग, उसके रेनफॉल का डिस्क्रिप्शन, ये सभी हमें डिस्क्राइब करना है। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा पूरे चैप्टर को, तो आपको पता होगा कि हमें इसका जवाब कहाँ मिलेगा। बच्चों इस प्रश्न का जवाब हमें साफ साफ पेज नंबर 139 पर दिया गया है। इसमें पॉइंट लिखा है ख, दक्षिण पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून काल। हमें इसी में पॉइंट वाइज लिखा है तापमान, वायुदाब व पवने और वर्षा। अब आप इसको बढ़िया से रीड करिए, समझिए और फिर पॉइंट वाइज अपने इस क्वेश्चन का जवाब लिखिए। मैंने आपको पेज नंबर बता दिया से कि आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं आपको एज इट इज पूरा सेंटेंस पढ़ के सुना दूंगी बच्चों, तो फिर क्या, आप तो केवल कॉपी करेंगे, आपका खुद का दिमाग तो कहीं यूज नहीं होगा। तो इसीलिए ताकि आप अपना दिमाग यूज करें, मैंने इस प्रश्न को या इसके जवाब को खुद से रिपीट नहीं किया है, क्योंकि मैं इसको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो बच्चों इसके बाद प्रश्न संख्या 2 हमसे पूछता है, भारत में वर्षा के वितरण का विवरण लिखिए, यानी कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में कैसा होता है इसको समझाना है। तो इसका जवाब भी बच्चों हमारे पेज नंबर 139 पर दिया गया है, यानी कि हमें 4 क्षेत्र बताए हैं, जिसमें से पहला क्षेत्र वो है जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जैसे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, हिमालय के दक्षिणवर्ती तलहटी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट। ये हो गए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इसके बाद आता है साधारण वर्षा वाले भाग, जिसके अंदर पूर्वोत्तर ढाल है, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमालय के तराई क्षेत्र और पूर्वी तमिलनाडु, ये सभी क्षेत्र आते हैं नॉर्मल रेनफॉल में। और इसी के बाद थर्ड पॉइंट में लिखा है न्यून वर्षा वाले भाग, इसके अंदर हमें मिलेंगे मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी व दक्षिणी आंध्र प्रदेश और मध्य पूर्वी महाराष्ट्र। और इसके बाद चौथा और लास्ट जो इसका डिवीजन है वो हमें बताता है वो एरिया जहाँ पर इनसफिशियंट रेनफॉल होता है, यानी अपर्याप्त वर्षा वाले भाग। और इसमें आता है तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब और लद्दाख। तो बच्चों पेज नंबर 139 पेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे पेज को बढ़िया से रीड करिए और सारे प्रश्न के जवाबों को समझने की कोशिश करिए। तो मैंने आपको प्रश्न संख्या दूसरे का जवाब भी बता दिया है, अब आपको केवल इसको बढ़िया से पढ़ के पॉइंट वाइज अपने आंसर्स में फ्रेम करना है। इसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो पूछता है राजस्थान की जलवायु संबंधी परिस्थितियों को समझाइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है क्योंकि हमने अभी लास्ट एक दो क्लासेस में राजस्थान के क्लाइमेट के बारे में ही पढ़ाई की है। इसका जवाब हमें मिलेगा पेज नंबर 142 पे, और जो सबसे स्टार्टिंग का पैराग्राफ है राजस्थान की जलवायु के नीचे, उसी पैराग्राफ को आप बढ़िया से पढ़ करके लिख सकते हैं, जिसमें हमें पूरा बताया गया है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, यहाँ पर विषमताएं पाई जाती हैं, यहाँ की जलवायु को हम किस कटिबंध में रखते हैं, यहाँ पे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वनस्पतियाँ और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ, केवल एक ही पैराग्राफ आपके इस सवाल के जवाब के लिए मोर देन इनफ होगा। तो यहाँ पर हमारा निबंधात्मक प्रश्न भी समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे आंकिक प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 पूछता है, भारत के मानचित्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों की स्थिति को दर्शाइए। जो जब हमने मैप डिस्कस किया था तो आपको याद होगा कि हमने ग्रीष्मकालीन मानसून काल की पवनों को देखा था। तो इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 138 पर। तो आप सिंपली एक मैप खरीदिए और उस मैप पर पेज नंबर 138 के मैप को समझ करके ड्रॉ करिए, जिसमें हमें 3 सांकेतिक बॉक्स दिए हैं। एक में है जहां पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, दूसरे बॉक्स यानी ग्रीन वाले बॉक्स में है जहां पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है, तीसरे बॉक्स में यानी स्काई ब्लू कलर के बॉक्स में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। आप इस मैप को अपने टीचर्स की हेल्प से समझ करके अपने मैप पर ड्रॉ करिए और ये इससे हमारा पहला आंकिक का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में वार्षिक वर्षा का वितरण दर्शाइए। तो बच्चों ये मैप भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप केवल एक मैप खरीदिए जो राजस्थान का हो और पेज नंबर 144 पर दिए गए मैप को समझ करके आप उसको अपने मैप पर ड्रॉ करिएगा। और इसी के साथ हमारी ये मैपिंग का जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी खत्म हो जाता है। आपने जो MCQ सॉल्व किया था, यानी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते वक्त जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बच्चों, उसके जवाब हमें इसी पेज नंबर पर यानी पेज नंबर 145 पर दिए गए हैं। तो आप अपने जवाबों को इन जवाबों से मिला सकते हैं और ये जवाब बिल्कुल सही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आज हमारा समय यहीं खत्म होता है और हमारा चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। मुझे आप सभी से उम्मीद है कि अब भारत की जलवायु के कंटेक्स्ट में कोई भी टर्म या कोई भी सेंटेंस आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा और कोई भी प्रश्न जो भारत की जलवायु से रिलेटेड है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़िया से करिएगा, टीचर्स की हेल्प लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।